हरे कृष्णा।
तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत है इस ओरिनेस भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी का। उनसे आज बहुत ही विशेष दिन है, तो उनसे आशीर्वाद की याचना करते हुए आज श्रीला जगदीश पंडित और श्रीला गोस्वामी जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। महान आचार्यों की कृपा ही हमारी भक्ति में एकमात्र आशा है एक बद्ध जीव के लिए, और तिरुभाव और आविर्भाव दिवस पे हमें उनसे खूब कृपा की याचना करनी चाहिए। वैष्णवों का तिरुभाव दिवस उनके आविर्भाव से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि तिरुभाव दिवस में हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में, हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि जीवन काल में उन्होंने किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, और जिस तरह से कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है उसी ढंग से वैष्णवों का गुणगान भी वैष्णवों से अभिन्न है। और इस ढंग से हम आज श्री जगदीश पंडित और श्री जीव गोस्वामी जी का हम संग कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करके और उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बद्ध जीव के लिए देहात्म चेतना से उठने की, ऊपर उठने की, देहात्म चेतना से मुक्ति पाने की एकमात्र उम्मीद आशा है महान आचार्यों की कृपा, अन्यथा हम लोगों का देहात्म चेतना से ऊपर उठना लगभग असंभव रहता है। तो इसी आशा के साथ कि हम लोग श्री जगदीश पंडित और जीव गोस्वामी पाद जी का गुणगान कर सके अपनी क्षमता के अनुसार, और उनसे हम कृपा की याचना करते हुए
हरे कृष्ण।
तो जगदीश पंडित जी, जैसा कि आप जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से हैं। तो जगदीश पंडित जी को बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि पूरे जगत के रक्षक हैं, और उनकी तुलना की गई है कृष्ण प्रेम के एक बादल के द्वारा समान, जो कि सब जीवों पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। जगदीश पंडित के एक भाई थे महेश पंडित, और ये जगन्नाथ मिश्र जी के घर के साथ ही रहते थे श्रीधाम मायापुर में। एक बार जब एकादशी का एक दिन था तो निमाई पंडित जोर जोर से रोने लगे, और वो तभी चुप हुए जब जगदीश पंडित जी के घर से महाप्रसाद दिया गया, और महाप्रसाद भी निमाई जो था वो चावल का प्रसाद था। तो निमाई ने एक बहुत ही चमत्कार किया, और निमाई ने जगदीश पंडित जी को अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया, चैतन्य महाप्रभु की। तो श्याम सुंदर रूप कैसा था? घनश्याम बादल की तरह उनका रंग, और सर पे मोर पंख लगाया हुआ। और ये देखकर जगदीश पंडित भावेश होकर मूर्छित हो गए। उसके बाद जब वो जगन्नाथपुरी धाम में आए पुरुषोत्तम क्षेत्र में, तो गौर सुंदर से आज्ञा प्राप्त करके जगदीश पंडित जी ने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया, और वहां पर वे जगन्नाथ जी के विग्रह को भी ले गए। कृष्ण लीला में जगदीश पंडित एक नर्तक चंद्रहास या फिर नाग पत्नी के इनका स्वरूप है। श्री जगदीश पंडित त्रिभागति महामहोत्सव की, श्री जगदीश पंडित जी की। और आज दूसरे महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद जी का भी तिरुभाव दिवस है। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षदों में से, शिष्यों में से छह गोस्वामी, षट गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, और श्रीनिवास आचार्य जी जो कि श्री जीव गोस्वामी जी के शिष्य थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उन्होंने षट गोस्वामी अष्टकम जो लिखा है, तो हम सबको इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और षट गोस्वामियों के अंदर इतनी शक्ति है कि वो बस जीवों को उनके जीवन का लक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। जीवार्थ दो यो मल वंदे रूप सनातन रघु यगो श्री जीव गोपाल को, क्योंकि जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा हम सही दिशा में कार्य नहीं करेंगे। तो षट गोस्वामी हमें जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, इतनी शक्ति है। और षट गोस्वामी हमें बद्ध जीव को उनके पापों के, जो पाप के फल है, उनसे मुक्त रखते हैं। पापो ताप निकम तनो तनु भताम गोविंद गाना अमृते, गोविंद का गुणगान करके जो बद्ध जीव अपने पाप के ताप में तड़पता रहता है उससे उसको मुक्ति दिलाते हैं। और षट गोस्वामियों के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरी पृथ्वी में बांटी जाती है। श्री चैतन्य कृपा भरो भूय भवो धारा वहन तार को, वंदे रूप सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को। चैतन्य महाप्रभु तो केवल धराधाम पर 48 वर्ष रहे, और उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं कि माध्यम बने ये षट गोस्वामी चे श्री चैतन्य कृपा भरो भारा वहंतार को श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदाम्य ददाति स्व पदांतिकम श्री रूप गोस्वामी जी के प्रणाम मंत्र में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो इन षट गोस्वामियों का हम सब गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए बहुत बहुत जैसे कहते हैं विशेष योगदान रहा है और हम लोग पूर्ण रूप से इनकी कृपा पर निर्भर है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाए गोसाए करे चरण वंदन जहां हैला विघ्न नाष्ट अभिष्ट पुराण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छाए गोसाए करे चरण वंदन जहां हैला विघ्न नाष्ट अभिष्ट पुराण। हम सबके जो भक्ति में आने वाले विघ्न हैं उन सबका नाश इन छह गोस्वामी कृपा से हो सकता है और हमारे सारे अभिष्ट पूर्ण हो सकते हैं। तो आज के दिन हम शिलाजी गोस्वामी जी से विशेष प्रार्थनाएं कर सकते हैं। शिलाजी गोस्वामी जी का इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में बहुत विशेष योगदान है। छह गोस्वामियों में से सबसे ज्यादा जो सिस्टमेटिक प्रीचर है वो शिलाजी गोस्वामी पाद है। शिलाजी गोस्वामी पाद के मिशन का प्रत्येक क्षण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ऑर्गेनाइज करने में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करने में लगा। शिलाजीव गोस्वामी जी के जीवन चरित्र से हम देखेंगे कि किस ढंग से उन्होंने इतना साहित्य लिखा ताकि गौड़िया वैष्णव जो परंपरा है वो बनी रहे और वो एक मिशनरी थे, एक मिशनरी स्पिरिट थी और कितने सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और पांच गोस्वामियों की शिक्षाओं को प्रस्तुत किया। तो जीव गोस्वामी, जीव का अर्थ ही है कि जो दूसरों को जीवन प्रदान करे। श्रीमद् भागवतम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जीवो जीवस्य जीवनम, कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो वास्तव में जीव गोस्वामी सब बद जीवों को जीवन प्रदान करते हैं अपने लेखकों लेखन के द्वारा और अपनी शिक्षाओं के द्वारा। जीव गोस्वामी जी का एक नाम जीविका भी है। जीविका का अर्थ है कि जिनके लिखे हुए लेखों का अध्ययन करके कोई भी बद जीव भावावेश होकर तरह तरह की आवाज निकालना शुरू कर देता है, एक्सटेसिव है जीविका। और जीव गोस्वामी का एक अर्थ ये भी है कि वो जीव का विस्तार करते हैं, जीव की क्या प्रकृति है, जीव का कृष्ण के साथ क्या संबंध है और जीव कृष्ण के साथ इस संबंध को कैसे स्थापित कर सकता है, किस विधि का पालन कर सकता है। तो ये जीव गोस्वामी जी का, उनके शब्द का, उनके नाम का अर्थ है। जीव गोस्वामी जैसा आप जानते हैं कि रूप और सनातन दो मुख्य शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु के, इनके एक भाई थे अनुपम। तो जीव गोस्वामी अनुपम जी के पुत्र हैं, यानी कि रूप और सनातन के नेफ्यू हुए, भतीजे हुए। ऐसा भी बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु पहली बारी रामकेली में आए थे अपने दो मुख्य शिष्य शाकर मलिक और डबीर खास, उस समय रूप और सनातन जो कि नवाब हुसैन शरिया के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने रामकेली गए थे इन दोनों भाइयों से मिलने के लिए। तो कुछ भक्तों का ये कहना है कि उस समय भी जीव गोस्वामी पैदा हो चुके थे और उस समय रामकेली में इन्होंने पहली बार चैतन्य महाप्रभु के चरणों के दर्शन किए थे। उसके बाद जैसे मालूम चलता है, बताया जाएगा शास्त्रों में, कि जीव गोस्वामी जी को बचपन से ही कृष्ण बलराम के विग्रह में बहुत रुचि थी। ये कृष्ण बलराम के विग्रह को लेकर सोते थे और कृष्ण बलराम को ये श्रृंगार करते थे, उनका स्नान करते थे, उनको भोग लगाते थे और उनके महाप्रसाद को बाकी जीवों में बांटते थे। तो शुरू से ही जीव गोस्वामी सभी जीवों पर दया करते थे, महाप्रसाद बांटते थे। आजकल तो बच्चे टेडी बियर से खेलते हैं ना, टेडी बियर लेकर सोते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है उनके माता पिता भी ऐसे करते हैं। तो लेकिन पहले बच्चे विग्रह से खेलते थे, विग्रह को अपने साथ रखते थे, अपना लगाव उनका विग्रह से इतना ज्यादा होता था। और जीव गोस्वामी जी के अंदर ये अनुभूतियां थी कि ये कृष्ण बलराम गौर नेताई से अभिन्न है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही हैं। तो इस ढंग से उनका बचपन बीता और बताया जाता है कि जब ये छोटे बच्चे थे तो इनके देह बिल्कुल एक महापुरुष के जो लक्षण बताए जाते हैं शास्त्रों में, क्या क्या महापुरुष के लक्षण होते हैं, 32 लक्षणों का वर्णन आता है। क्या क्या लक्षण होते हैं, हाथ बड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं, घुटनों तक पहुंचते हैं, और आंखें कमल लोचन, आंखें कमल की तरह होती हैं और चौड़ा माथा होता है। तो हम सब अपने आप को चेक करना शुरू कर दें और किसी के कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ है, कान क्या, ब्रॉड चेस्ट और नेक छोटी, उभरा हुआ नाक, रेडिश फिंगर लिप्स टिप्स, और उसके बाद उनका जो देह की कांति थी बहुत ही सुनहरी थी। तो ये जीव गोस्वामी जी बचपन से ही ये सब दिखा रहे थे। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती उनको कुछ ऊपर क्रीम व्रीम लगाई गई, आजकल आज के बच्चों को तरह तरह के लोशंस लगाए जाते हैं किसी ढंग से कुछ चमक आ जाए। कई बार छोटे बच्चे पैदा होते हैं उतने गोरे नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता को आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बड़ा विश्वास होता है कि खूब लोशन वोशन लगा के उसका रंग बदल देंगे। लेकिन जीव गोस्वामी जी का जो स्वाभाविक कांति थी वो सुनहरी थी, गोल्डन ह्यू जिसे बोलते हैं, और सब महापुरुषों के अंदर लक्षण थे। और बहुत ही मेधावी छात्र थे, व्याकरण तर्कशास्त्र और उसके साथ साथ पूरा उनके संस्कृत का ज्ञान बहुत ज्यादा इनको आता था, अच्छे ढंग से निपुण थे उसमें। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भक्तों के लिए एक विशेष विद्यालय होना चाहिए जहां पर उनके सारे अच्छे संस्कार प्राप्त कर सके। तो जैसे हम देखते हैं जीव गोस्वामी जी कोई ऐसे भक्तों के स्कूल में नहीं गए थे अलग से, लेकिन क्योंकि वो एक नित्य पार्षद हैं और शुरू से ही उनको ऐसे संस्कार घर में प्राप्त हुए, तो बचपन में ही उनके अंदर पूर्ण रूप से भक्ति उजागर थी। इसी ढंग से प्रहलाद महाराज भी असुरों के स्कूल में गए, शरण रामक जैसे उनके अध्यापक थे, उसके बीच में भी वो उन्होंने पूरे से भक्ति का प्रचार किया असुरों को। कृपा करिए मोबाइल बंद कर दें। जीव गोस्वामी जी के लिए राधा दामोदर बांसुरी बजाया करते थे, आज उनका हम गुणगान सुन रहे, तो कृपया करें मोबाइल बंद रखें, अच्छे ढंग से हम सुनने का प्रयास करें। तो जीव गोस्वामी जी के अंदर सारे के सारे अच्छे गुण थे, और बताया जाता है अनुपम जी की बहुत ही, जो उनके पिता थे, जल्दी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब अनुपम जी की मृत्यु हुई तो जीव गोस्वामी जी का इस भौजत को लेकर काफी वैराग्य उत्पन्न हो गया, और उन्होंने तभी निर्धारित कर लिया था कि वे अपने चाचाओं के ताया की तरह रूप और सनातन जी की तरह वृंदावन में जाएंगे और वैराग्य का जीवन बिताएंगे। कुछ समय के बाद इनकी माता की मृत्यु भी हो गई और फिर ये सीधा वृंदावन के लिए निकलते हैं। लेकिन वृंदावन जाने से पहले ये कहां जाते हैं, नवद्वीप में। तो नवद्वीप महात्म्य में भक्तिनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि संघ से जी गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। जब जी गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को देखते हैं तो पहचान जाते हैं, बोले आप साक्षात बलराम जी हैं, आप अनंत हैं, आपका मैं कितना गुणगान करूं, आपकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों की छाया प्राप्त होती है। तो ये कहकर वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु उनका आलिंगन करते हैं और उनको नवद्वीप की परिक्रमा कराते हैं। सबसे पहले वो उनको चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर ले जाते हैं, फिर सच्ची माता के घर ले जाते हैं। सच्ची माता और विष्णुप्रिया जी खुद अपने हाथों से जीव गोस्वामी के लिए प्रसाद बनाते हैं और उनको प्रसाद खिलाते हैं। और जो वंशी वदन जी जो कि चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, सच्ची माता के साथ रहते थे, वो फिर नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी जी को और घुमाने ले जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य के घर में जाते हैं, स्वयं श्रीवास ठाकुर जी के घर में जाते हैं और स्वयं श्रीवास ठाकुर जी से मिलते हैं। तो इस ढंग से सब नवद्वीपों का जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के साथ भ्रमण करते हैं। उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ये योजना थी कि आप भी रूप और सनातन के साथ वृंदावन में रहो, तो आपका असली स्थान वृंदावन ही है, आप वृंदावन में जाओ। लेकिन वृंदावन जाने से पहले बनारस में कुछ दिन रुक जाना और बनारस में कुछ सिद्धांत प्राप्त करके जाना। तो बनारस में रुकते हैं और बनारस में किन से मिलते हैं, वो मधुसूदन वाचस्पति। मधुसूदन वाचस्पति जो कि सर्वभूम भट्टाचार्य के शिष्य थे, तो उनसे वो वेदांत का ज्ञान लेते हैं। और जीव गोस्वामी इतनी जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं कि उन्होंने जो वेदांत के ऊपर सब अलग अलग टीकाएं थी, शंकर भाष्य था और साथ में माधव जी का लिखा हुआ था, रामानुजाचार्य जी का लिखा हुआ और वाचस्पति जी का लिखा हुआ, इन सबको कंबाइन करते हैं और सर्वसंगनीवाद ये प्रस्तुत करते हैं जिसमें अलग अलग टीकाएं हैं वेदांत के ऊपर। तो जीव गोस्वामी इतने बड़े फिलोसफर हैं कि आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनके लिए उनकी अलग से पुस्तक जो उनका लेखन रखा हुआ है, और काफी जो विद्यार्थी हैं जीव गोस्वामी जी के लेखन के ऊपर ही पीएचडी करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आज भी जीव गोस्वामी जी के लेखन का इतनी मान्यता है। तो आप देख सकते हैं कि मायावादियों के गढ़ में रहते हुए भी जीव गोस्वामी गौड़िया वैष्णव सिद्धांतों को भूले नहीं, और उनको याद आया कि उनका मुख्य उद्देश्य यहां वाराणसी में नहीं रहना है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य कहां जाना है, वृंदावन। तो वृंदावन में जाते हैं और वहां उनके जो रूप और सनातन, जो उनके अंकल हैं, जो उनके ताया जी हैं, वो वहां पे हैं, और जाके वो रूप और सनातन गोस्वामी जी से मिलते हैं। सनातन गोस्वामी के पास जाकर जीव गोस्वामी जी ये आग्रह करते हैं कि उनको दीक्षा दें, लेकिन सनातन गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, विनम्रतावश कि आप दीक्षा किनसे लो, रूप गोस्वामी पास से। तो फिर जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पास के पास जाते हैं कि मुझे दीक्षा प्रदान करो। तो रूप गोस्वामी जी उनको तुरंत शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, हालांकि वो जानते हैं ये मेरा ही भतीजा है, अनुपम का तो बेटा है, बचपन से इसको देख रहा हूं, ठीक ठाक है, सारा सिद्धांत जानता है, सब कुछ है, तुरंत दीक्षा दे दी नहीं। रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी से बहुत, जैसे कहते हैं, नगण्य नगण्य सेवाएं कराते हैं, मिनियल सर्विसेज कराते हैं, अपने बर्तन धुलवाएंगे, भिक्षा मंगवाएंगे, फिर भगवान के लिए भोग बनाते थे, रूप गोस्वामी के चरणों की सेवा करते थे, वो रूप गोस्वामी ताल वृक्ष के पत्तों पर लिखते थे, ताल वृक्ष को पत्तों को तैयार करते थे, रूप गोस्वामी जो लेख लिखते थे उसकी वो एडिटिंग करते थे, उसको चेक करते थे, तो तरह तरह के उनके उनसे उन्होंने सेवाएं ली, और जब देखा कि इनके अंदर सेवा का भाव है, तब रूप गोस्वामी जी ने उनको दीक्षा प्रदान की। तो प्रत्येक शिष्य के लिए गुरु का इस ढंग से एक मिनियल सर्वेंट बनना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीव गोस्वामी जो इतने बड़े फिलोसफर थे और सब कुछ जानते थे, इसके बाद भी रूप गोस्वामी उनको टेस्ट कर रहे हैं कि ये एक शिष्य बनने योग्य हैं कि नहीं है। और जीव गोस्वामी जी ने भी पूरे हृदय के साथ रूप गोस्वामी जी की सेवा की, जिस ढंग से गौर किशोरदास बाबा जी, उन्होंने भक्ति श्याम सभी ठाकुर महाराज विमला प्रसाद जी को बहुत चक्कर लगवाया, मैं हमें दीक्षा नहीं दे सकता, अभी गौरांग महाप्रभु से पूछूंगा, अभी पूछ नहीं पाया, उन्होंने मना कर दिया, ताकि वो चेक कर रहे थे कि इनके अंदर कितनी लालसा है दीक्षा प्राप्त करने की। तो वास्तव में दीक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम गुरु के एक मिलन शरण बन सके, उनके हाथ के हम उपकरण बन सके। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो वर्णन आता है कि एक बार वृंदावन में रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत ग्रंथ लिख रहे हैं और जीव गोस्वामी उसका संकलन कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे, तभी वहां पर वल्लभाचार्य जी आते हैं। वल्लभाचार्य जी एक्चुअली पहले भी रूप गोस्वामी से मिले थे, जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में मिले थे। वल्लभाचार्य काफी वरिष्ठ भक्त हैं, और जब वो रूप गोस्वामी के पास आते हैं, वो बोलते हैं दिखाओ आप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो। तो उन्होंने बोला हम भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे हैं, जिसमें कि शुद्ध भक्ति कैसे की जाए इसका वर्णन है। और जब वो देखते हैं और उसमें लिखा हुआ रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भक्ति और मुक्ति की स्प्रिया पिशाचनी के समान है। तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि ये ठीक नहीं लिखा, मुझे बात ठीक नहीं लगी, भक्ति और मुक्ति को आप पिशाचनी कह रहे हो, ठीक नहीं है। और रूप गोस्वामी जो कि भक्ति रस के आचार्य हैं, उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया वल्लभाचार्य से, बोले आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको ठीक बदल दूंगा। उसके बाद वल्लभाचार्य यमुना में स्नान करने जाते हैं तो जीव गोस्वामी उनके साथ साथ जाते हैं। जीव गोस्वामी आयु में बहुत छोटे हैं और वल्लभाचार्य आयु में बहुत बड़े हैं, तो जीव गोस्वामी जी ने बोला कि आपको मेरे गुरु रूप गोस्वामी जी के जो लेखन में क्या गड़बड़ नजर आई। तो उन्होंने बोला ऐसा भक्ति और मुक्ति को पिशाचनी बोला है। तो जीव गोस्वामी ने बोला नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने भक्ति और मुक्ति को पिशाचनी नहीं कहा, भक्ति और मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी से तुलना की है। तो ये बात वल्लभाचार्य को बहुत ठीक लगी, बिल्कुल ठीक कहा, बोले तुम तो बहुत बड़े विद्वान बालक हो, निश्चित रूप से रूप गोस्वामी ने ठीक ही लिखा था, ये गलती मेरी ही है। तो वापस जब वल्लभाचार्य जी आते हैं तो रूप गोस्वामी को कहते हैं कि ये लड़का कौन है। बोले मेरा शिष्य है जीव, ये बहुत ही मेधावी है, बहुत ही योग्य है। बोले क्या हो गया। तो गुरु भी जानना चाहते क्यों गुणगान किया जा रहा है शिष्य का, क्या हो गया। बोले इसने ऐसा ऐसा बताया और बिल्कुल ठीक बताया जो तुमने लिखा था भक्ति, इसमें भक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचरी बिल्कुल ठीक है। तो उस समय तो रूप गोस्वामी चुप रहे, वल्लभाचार्य जी चले गए। तब उन्होंने जीव गोस्वामी जी को बुलाया, वो बोला अच्छा बहुत अहंकार बढ़ गया है, बहुत अहंकार बढ़ गया है, बहुत बड़े विद्वान हो, इतने महान वैष्णव को, बड़े वैष्णव को आप करेक्ट करोगे, उनसे बहस करोगे, तुम्हारे अंदर इतना क्रोध है, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, तुम वृंदावन रहने योग्य नहीं हो, गेट आउट, अभी छोड़ दो। अब सोचिए क्या जीव गोस्वामी पे बीती होगी। उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, गुरुदेव मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सत्य ही तो साबित किया है और जो आपने लिखा है उसी उनकी शिक्षाओं को स्थापित किया है, मेरी कौन सी इसमें गलती है। कोई आर्गुमेंट नहीं किया। क्या किया जीव गोस्वामी जी ने, चुपचाप चले गए, चुपचाप। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट में रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी का निष्कासन कर दिया कि वृंदावन से निकल जाओ। वास्तव में जीव गोस्वामी के अंदर बहुत अहंकार था, वास्तव में उन्होंने अपने वरिष्ठ वैष्णव वल्लभाचार्य जी को करेक्ट किया। नहीं, जीव गोस्वामी तो नित्य पार्षद है, विलास मंजरी है। रूप गोस्वामी जी ये जीव गोस्वामी के माध्यम से हम सब बद जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा क्या है कि भगवान के धाम जाना है, वृंदावन में रहना है, तो अपनी वाणी पे, वाणी के वेग को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में क्या कह रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान अभिषेक धीरान सर्वान अपिमम पृथ्वी से शिष्या। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उपदेशामृत रूप गोस्वामी जी ने लिखा, यानी कि ऐसे आदेश, ऐसे उपदेश जिनका पालन करके हम अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, या जो कि सारे उपदेशों का नेक्टर है, अमृत है, उसका सबसे पहला शब्द क्या है, वाचो वेगम। वाणी के वेग को रोकना बहुत जरूरी है। जीव गोस्वामी के अंदर कोई वाणी का वेग नहीं था, लेकिन हम सबको शिक्षा देने के लिए जीव गोस्वामी को उन्होंने निष्कासित किया कि तुमने अपनी वाणी के वेग को रोक नहीं पाए तो तुम आध्यात्मिक जीवन के लिए योग्य नहीं हो। अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो सबसे पहले वाणी के वेग को रोकना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। बता दें निष्णा चक्र ठाकुर पाद की जो वाणी के वेग को नहीं रोक सकता, वो उसकी जितनी भी आध्यात्मिक सुकृतियां हैं वो ऐसे लीक हो जाती हैं जैसे कि एक टूटे हुए मटके में कोई पानी डाल रहा है, हाफ बेक्ड, अभी आधा पका हुआ मटका है, उसमें पानी कोई डालता रहे तो पानी टिकेगा? क्या कहना, पानी टिकेगा? निश्चित रूप से पानी नहीं टिकेगा। हम जितनी मर्जी तपस्या कर लें, आध्यात्मिक सुकृतियां इकट्ठे कर लें, लेकिन वाणी के वेग को नहीं रोक सकते हैं तो सबके सब निकल जाते हैं, ठहराव नहीं आएगा उसमें। इसलिए वाणी के वेग को रोकना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो वाणी को वेग में जैसे हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कमेंट्स दे देते हैं, किसी का भी हम मजाक उड़ा देते हैं, किसी की भी हम निंदा कर देते हैं, तो बहुत ध्यान रहना चाहिए, पूर्वक रहना चाहिए वैष्णव समाज में। जीव गोस्वामी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जीव गोस्वामी ने केवल रूप गोस्वामी जी के जो शिक्षाएं थी उनको सही रूप से स्थापित ही करने का प्रयास किया, लेकिन रूप गोस्वामी ने उनको तिरस्कार कर दिया। और उसके बाद देखिए कि एक शिष्य को गुरु की डांट कैसे सहनी चाहिए। जीव गोस्वामी तुरंत वृंदावन छोड़कर चले गए और नंदगांव जो कि 13 कदम है, 13 कदम से लगभग कुछ ही दूरी पर उन्हें 20-30 किलोमीटर की दूर पर नंदगांव में उन्होंने एक वृक्ष की जो खोल होती है उसके अंदर रहते थे और बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि सारा विश्व जानता है कि मैं कितना बड़ा फिलोसफर हूं, सारे के सारे शास्त्र मुझे आते हैं, गुरु ने मेरा तिरस्कार कर दिया, ये अच्छा मौका है एक अलग मठ बना लूं, फॉलोइंग तो है ही मेरी, एक अलग से मठ बना लेता हूं, लोग तो मेरी जान पहचान है ही, ऐसे करेंगे आज के समय में, मेरा कसूर भी नहीं है, आसपास के लोग और इकट्ठे हो जाएंगे, शिष्य क्या है, गुरु का अहंकार बढ़ गया लगता है ना, गुरु ने तिरस्कार कर दिया। ये कोई बात है, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद अपने शिष्यों को इतना डांटते थे कि कामते थे, और आजकल गुरु अगर शिष्य को डांटेंगे तो भाग ही जाएंगे, वो जितना प्रभुपाद डांटते थे। प्रभुपाद आप प्रभा लीलामृत पढ़ते हैं, एक ही महीने के अंदर प्रभुपाद ने वृंदावन के कितने प्रेसिडेंट्स बदल दिए थे, प्रेसिडेंट अपने भी बदल देते थे कि तुम योग्य नहीं हो, फिर प्रेसिडेंट उसमें रखते तो उसको बदल देते थे छोटी बात पर, कि वृंदावन में जो चौकीदार है उसने रात को घंटी नहीं बजाई, प्रेसिडेंट आउट बाहर, तुम किस लायक, क्या तुम्हारा मैनेजमेंट है, और ये नहीं कि कोई आर्गुमेंट करेगा, ये करेगा, एक मौका होगा आउट, चुपचाप बैठा होगा ऐसे। ये हमें सीखना चाहिए कि कोई वरिष्ठ वैष्णव हमें डांटता है, क्रिटिस करेक्ट करता है, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। हमारा अहंकार इतना बड़ा रहता है कि हम थोड़ी सी भी डांट, थोड़ी सी भी करेक्शन सहन नहीं कर सकते। जीव गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं कि वो बहुत पश्चाताप करते रहे, ये नहीं कि चलो कोई अलग से मठ नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर गुरु को कोसते रहे और बोलते रहे कि मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, है? ना इंसाफी हुई है, और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया, गांव वालों को, फिर गांव वाले सब इकट्ठे होकर रूप गोस्वामी के पास जा रहे हैं, क्या हो रहा है भैया, ले लो इस लड़के को, क्या हो गया, क्या कुछ सॉर्ट आउट करा दिया, सुलह करा दी गुरु शिष्य की, ऐसा कुछ नहीं। वो वृक्ष खोल में पड़े हैं, कुछ नहीं खा रहे, केवल आटे के साथ यमुना का पानी मिलाकर थोड़ा सा कच्चा आटा खा लेते थे, और एक साल का मौन व्रत रखा उन्होंने, एक साल का मौन व्रत, इतना अपने आप को उन्होंने पश्चाताप किया। और ऐसा नहीं कि पश्चाताप करते 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 डिप्रेशन में चले गए, सेवा बंद नहीं, पश्चाताप कर रहे थे, और इसी समय में उन्होंने षट संदर्भों की रचना की, जो जीव गोस्वामी पाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं उनमें सबसे मुख्य ग्रंथ है षट संदर्भ। जो षट संदर्भ है ये भागवत के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। षट संदर्भ कौन कौन से हैं, किसी को मालूम है? सबसे पहला क्या है? तत्व संदर्भ। तत्व संदर्भ में बताया गया है कि भागवत ही के द्वारा ही हम परम सत्य को जान सकते हैं। फिर है भागवत संदर्भ, उसमें भागवत संदर्भ में बताया गया है कि जो परम सत्य है ये निराकार और साकार, इसमें क्या अंतर है, उस परम सत्य साकार स्थापित किया जाता है। फिर है परमात्मा संदर्भ, कि परमात्मा कैसे कण कण में उपस्थित हैं और भगवान के कौन कौन से अवतार होते हैं। फिर है कृष्ण संदर्भ, कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। फिर है भक्ति संदर्भ, कि किस विधि के द्वारा हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है प्रीति संदर्भ, कैसे भगवत प्रेम हमें प्राप्त होगा। ये षट संदर्भ पूरे के पूरे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को उपस्थित कर प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने षट संदर्भों की रचना की। आप देखिए, इतना बड़ा सिद्धांत लिखने के लिए हम कहेंगे भैया अनुकूल वातावरण चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, हमें तो पढ़ने के लिए सब चाहिए, तो लिखने के लिए बताइए क्या स्थितियां होंगी। और ऐसी स्थिति में जब गुरु ने तिरस्कार किया हुआ है और वृंदावन से बाहर रह रहे हैं, नंदगांव में रह रहे हैं, मुश्किल से दिन में एक बारी कच्चे आटे के साथ यमुना के पानी को मिलाकर खा रहे हैं और पश्चाताप किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इस षट संदर्भ की रचना की। ये है एक गुरु शिष्य का संबंध, और अपने गुरु के प्रति वैसे हृदय में प्रेम रखा हुआ है उन्होंने। तो एक बार सनातन गोस्वामी वहां से निकलते हैं, तो सनातन गोस्वामी जहां भी जाते थे वृंदावन में लोकप्रिय, सब लोगों को बहुत सबके प्रिय थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी सबसे संबंध स्थापित करते थे, सबके घर में जो पूछते थे कि आपकी पुत्री का विवाह हुआ नहीं हुआ, फसल कैसे हुई। भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि जब एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाते थे सनातन गोस्वामी, तो सारे के सारे ब्रजवासी उनको सी ऑफ करने आते थे, और जब वो एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाते थे तो सारे ब्रजवासी रोते थे, और सनातन गोस्वामी तब तक वहां खड़े रहते थे जबकि सारे सारे ब्रजवासी शांत ना हो जाएं। उनको सांत्वना देकर ही सनातन गोस्वामी अगले गांव में जाते थे, और जैसे अगले गांव में जाते थे खबर आती थी कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं, सारे गांव वाले खुशी खुशी आते थे उनको रिसीव करने के लिए, बहुत उत्साहित होकर। तो सब जैसे ही नंदगांव में सनातन गोस्वामी पहुंचे, सारे ब्रजवासी आसपास इकट्ठे हो गए, बोले पता नहीं आपके अलावा एक और बाबा जी हैं, बहुत ही युवक बाबा जी हैं, मुश्किल से दिन में एक बार ही खाते हैं, बिल्कुल मौन व्रत रखते हैं और बहुत ही कमजोर हो गए हैं। तो समझ गए सनातन गोस्वामी कि ये कौन होगा, हमारा जीव ही है। जब सनातन गोस्वामी ने जीव को देखा, बहुत दुबले पतले हुए पड़े हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी, तो सनातन गोस्वामी को देखकर बहुत दया आई उन पर। वो तुरंत जाते हैं रूप गोस्वामी के पास। देखिए मैटिकेट, ये भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है। ऐसा नहीं है कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, उनके गुरु के समान हैं, उनको ये देखते ही रूप गोस्वामी में गुस्सा आ गया, क्या हालत बना दी है, रूप गोस्वामी का अहंकार बढ़ गया, अपने शिष्य को बाहर निकाल दिया, चल मैं ले जाता हूँ तेरे को, अभी तेरे को देखता हूँ, चल जी मैं दिखाता हूँ तेरे को, चल अभी अभी रूप को ठीक करता। अब एटिकेट्स देखिए कैसे वैष्णव एटिकेट्स होते हैं। सनातन रूप जीव को वहीं रहने दिया और सनातन गोस्वामी गए रूप के पास, बोले कैसा चल रहा है लेखन वेखन। बोले आजकल थोड़ा जीव नहीं है तो थोड़ा काम रुक गया। बोले मुझे लग रहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य मुख्य सिद्धांत है उनको भूल गए हो। तो रूप कहते हैं मैं भूल गया हूँ, कौन सा सिद्धांत भूल गया हूँ। तो सनातन बोलते पहले बताओ कौन से सिद्धांत है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा सिद्धांत भूले हो। तो देखिए कितनी सरल डीलिंग्स हैं वैष्णव के बीच में। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के तीन मुख्य सिद्धांत हैं, नामे रुचि, वैष्णव सेवा जीवे दया। सनातन ने पकड़ा, क्या बोलो दोबारा बोलो। बोले नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया। बोले क्या नहीं करे तुम आजकल, जीवे दया। जीव पर दया नहीं करते, तो फिर रूप गोस्वामी को याद आया, हाँ जीवे दया। बोले अरे जीव की इतनी बुरी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है कि हवा का झोंका भी आएगा उसको गिरा देगा, इतना दुबला हो गया, इतना कमजोर हो गया है, अब उसको स्वीकार कर लो। फिर रूप गोस्वामी जाते हैं नंदगांव में और जीव गोस्वामी को लेकर आते हैं, और इसके बाद रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको नरिश करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनके स्वास्थ्य को दोबारा लाते हैं, और इस ढंग से गुरु और शिष्य का ये मधुर संबंध है। और फिर जीव गोस्वामी उनके ग्रंथों का संकलन करते हैं जो उनकी सेवा को करते हैं। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी का इतना मधुर संबंध था। जीव गोस्वामी जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, फिर भी देखा जाता है कि लोगों ने उनकी भी आलोचना की। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन आता है कि तीन मुख्य कार्यों के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल, जिसे कहते हैं कोई भी भक्त अगर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में कुछ योगदान करता है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर होती है। अगर कोई कार्य ही नहीं करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कोई सेवा करने का प्रयास करेगा तो कंट्रोवर्सी जरूर होती है। तो रूप जीव गोस्वामी जी को भी नहीं छोड़ा गया। सबसे पहले उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि अपने आप को वैष्णव बताते हैं लेकिन ये विनम्र नहीं है। तो क्यों विनम्र नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था कि वृंदावन में एक बार आए थे रूप नारायण, एक रूप नारायण चक्रवर्ती थे, जो कि बोलते थे कि बहुत बड़े विद्वान हैं, और क्या करते थे अलग अलग विद्वानों के पास जाते थे, उनसे शास्त्रों का डिबेट करते थे और उनको हराकर उनसे विजय पत्र साइन करा लेते थे। तो रूप और सनातन के पास गए, बोलो आपको मैं चैलेंज करता हूँ। रूप सनातन बोला क्या समय नहीं है हमारे पास। बोले घबरा रहे हो, करो आओ। बोले तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हो। तो रूप और सनातन जी ने विनम्रता से बोला हम लोगों का गुणगान अतुशक्ति है, हम इतने विद्वान नहीं है, तो हम लोग वास्तव में आपके योग्य नहीं, आपसे हम शास्त्रार्थ करें। तो बोले ठीक है साइन कर दो। उन्होंने चुपचाप साइन कर दिए। साइन कर दिए तो रूप नारायण को लगा आहा मैं तो पूरे विश्व का सबसे दिग्विजय पंडित हो गया। तो उन्होंने बोल दिया मैंने रूप और सनातन को भी हरा दिया। फिर उनको मालूम चला कि एक और है जीव गोस्वामी, इनका ही भतीजा है। तो बोले जब इनको हरा दिया, इन्होंने साइन कर दिया, वो भी कर देगा। तो जीव के पास गए, देखो तुम्हारे अंग बड़े लोगों ने कर दिया, रूप और सनातन ने, फटाफट साइन करो, हार जाओ तुम भी, हार मानो। जब उनको मालूम चला जीव गोस्वामी को कि इस ढंग से रूप और सनातन को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जीव गोस्वामी को बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि ये बाद में जाके गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लिए ठीक नहीं होगा। तो जीव गोस्वामी ने उनको चैलेंज किया कि मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। यमुना के तट पर बैठ के 7 दिन के लिए उनके शास्त्रार्थ करते रहे और रूप नारायण को उन्होंने हरा दिया और रूप नारायण को खदेड़ के वापिस भेज दिया। तो बाद में लोग उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि जीव गोस्वामी को भी विनम्रतापूर्वक साइन कर देना चाहिए था। अब ये आरोप लगाने वाली बात है, ढूंढा जा रहा है, उन पर आरोप लगाया कि आपने, आप विनम्र नहीं हो, त्रिनादपि सुनिश्चय आपका पालन नहीं किया। तो श्रीलाल प्रभुपाल इस पर लिख रहे हैं कि एक भक्त को के ऊपर जब कोई आक्रमण करे तो उसको स्वयं पर जब आक्रमण किया जाए तो उसको चुपचाप सहन कर लेना चाहिए, लेकिन जब किसी दूसरे भक्त की निंदा सुने तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। तो रूप और सनातन की निंदा की जा रही थी, इसलिए जीव गोस्वामी ने उसको सहन नहीं किया और उन्होंने रूप नारायण उस दिग्विजय पंडित को हरा दिया। लेकिन उनके आलोचक हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं कि जीव गोस्वामी विनम्र नहीं है। दूसरा उनकी आलोचना की जाती है कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा तो जीव गोस्वामी के पास ले गया, तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, उस ग्रंथ को देखते ही कुएं में फेंक दिया और यह देखकर कृष्णदास कविराज जी की मृत्यु हो गई। ये तो बाय चांस कृष्णदास कविराज जी ने एक दूसरी कॉपी रखी हुई थी तो आगे वो चल गई चैतन्य चरितामृत, लेकिन जीव गोस्वामी जी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी से इतनी जेलसी थी, ये आलोचना की जाती है उस बात पे, और जबकि इसका कोई बेस नहीं है। ये कहने का बताया जा रहा है कि आलोचना कैसे कैसे की जाती है। तीसरी उनकी आलोचना की जाती है जीव गोस्वामी जी की कि इन्होंने जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत है पराकीय रस की परिकाष्ठता, उसकी अवहेलना की। इन्होंने स्वाकीय रस का प्रचार किया। पराकीय रस का अर्थ है कि कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध है, जो कि विवाहित गोपियां हैं, इसको पराकीय, दूसरी स्त्री के साथ संबंध, अपनी पत्नी को छोड़कर। तो कई ऐसे भक्त हैं जो सहन नहीं कर सकते कि राधा कृष्ण का संबंध तो है लेकिन राधा कृष्ण विवाहित नहीं है। जीव गोस्वामी के कुछ शिष्य थे उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए ऐसे शिष्यों के लिए और बाद में कुछ सहिज्या लोग पराकी रस का गलत प्रयोग ना करें। आज भी नवद्वीप और वृंदावन में ऐसे बहुत से सहिज्या हैं जो कि अविवाहित स्त्रियों के साथ रहते हैं और ये कहते हैं कि इसे हम पराकी रस को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अविवाहित स्त्रियों का संग करके हम पराकी रस को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ऐसे सहिज्यों का कईयों का कहना है। तो इसका खंडन करने के लिए और आगे ऐसी मेल प्रैक्टिस इसको रोकने के लिए जीव गोस्वामी जी ने स्वाकीय रस का गुणगान किया। उनका ग्रंथ है गोपाल चंपू, जिसके पूर्व भाग में उन्होंने पराकीय रस का है और उत्तर भाग में उनका स्वाकीय रस का वर्णन किया है। तो उन्होंने पराकीय रस की अवहेलना नहीं की, लेकिन स्वाकीय रस का गुणगान निश्चित रूप से किया, जो कि कई वैष्णव आचार्यों ने किया। तो तीन तरह के आरोप जीव गोस्वामी जी पर लगाए जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि कौन कितना ही महान आचार्य क्यों ना हो, जिन्होंने आलोचना करनी है वो आलोचना करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी जी का गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही विशेष योगदान है। बताया जाता है कि अकबर उस समय राजा थे आगरा में, और वो जीव गोस्वामी जी से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए कि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि अकबर को लाया गया था वृंदावन में और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको निधिवन में लाया गया था, और जीव गोस्वामी जी की कृपा से अकबर को बहुत ही सुंदर एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ। और अकबर ने बोला कि ठीक है, यहाँ पे जितने मंदिर बनाना चाहते हो आप बनाइए। तो अकबर से ही परमिशन प्राप्त करके मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया गया, और अकबर से ही इन्होंने सुविधा प्राप्त करके जीव गोस्वामी जी ने राधा दामोदर मंदिर में ग्रंथ सभा पुस्तकालय बनाया, है ना, लाइब्रेरी। क्योंकि जीव गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य था कि षड गोस्वामियों के ग्रंथों को का संरक्षण किया जाए। जीव गोस्वामी जी इतने बड़े फिलोसफर थे, इतने बड़े लेखक थे, कितने श्लोक लिखे उन्होंने, लगभग 5 लाख श्लोकों की रचना की। वेदव्यास जी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की। वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, इतने उपनिषद लिखे, वेदों की रचना की, कुल मिलाकर 4 लाख श्लोक। और ये 4 लाख श्लोक भी केवल शुद्ध भक्ति के विषय में नहीं है, कुछ मिश्रित भक्ति, कुछ कर्म कांड, ज्ञान कांड है, लेकिन जीव गोस्वामी जी ने 5 लाख श्लोक लिखे और सब शुद्ध भक्ति के विषय में है। और दूसरी बात, वेदव्यास जी ने तो श्लोक बोले और गणेश जी ने इसका लेखन किया। जीव गोस्वामी जी के वैसे कोई गणेश जी की सुविधा नहीं थी, जीव गोस्वामी जी ने खुद श्लोक लिखे, और उनके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं था कि ना फटाफट टाइप किए, सारे के सारे फॉन्ट साइज उनके पास थे, एडिटिंग रीएडिटिंग हो गए फर्स्ट क्लास, कॉपी कट पेस्ट करके 5 लाख श्लोक हो गए। ये भी उनके पास सुविधा नहीं थी। ताल के पत्तों पर लिखते थे, और कैसे लिखते थे, अपने मन में वो श्लोक सोचते थे, खड़ा खड़ा उसको लिख देते थे, और एक बार लिख दिया तो दोबारा एडिटिंग की आवश्यकता नहीं है। ताल के पत्तों में लिखते थे तो पहला एक पेज लिख दिया, उसको सुखा रहे थे तो तीसरा पेज लिखते थे, और फिर उनको मालूम होता था कि दूसरे पेज में कहां से श्लोक शुरू होगा, कहां श्लोक खत्म होगा। आप समझिए, पहले एक पेज लिखा, उसको सुखा रहे हैं तो तीसरा पेज लिख रहे हैं, फिर बाद में 1, 3, 5, 2, 4, 6 इस सीरीज में वो ताल के पत्तों पर लिखते थे। और मेटल स्टाइलस यूज करते थे, मेटल का एक जैसे ताल के पत्ते हैं उसके ऊपर मेटल से लिखेंगे तो उस पर पूरा का पूरा वो स्क्राइब हो जाएगा, उसके बाद दोबारा उसको रीएडिट भी नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते। सो मच श्योर, पक्के होते थे कि यही श्लोक है, उसकी यही भाषा है, उसमें कोई फेर फेर की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे 5 लाख श्लोक लिखे। वेद व्यास जी को भगवान का अवतार बताया जाता है, साहित्यिक अवतार। तो देखिए, भक्त भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे हनुमान जी ने कैसे समुद्र पार किया था, एक ही छलांग लगा दी। जब राम जी की बारी है, बोले कैसे करूं, पुल बनाओ। अरे कोई कह सकता है, अरे हनुमान जी वानर रूप में है, एक छलांग मार दी। आप अपने परम पुरुषोत्तम भगवान बताते हो, आप नहीं कर मार सकते एक छलांग। सबको एंगेज किया सेवा में, सब ला रहे हैं, पत्थर बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, क्या है ये भगवान की लीला है। जब भक्तों के पास भी शक्ति आती है, वो भगवान की दी हुई शक्ति है। तो यहाँ व्यासदेव जी लिटरल इनकार्नेशन है, लेकिन उससे ज्यादा जीव गोस्वामी है। उन्होंने 4 लाख श्लोक, उन्होंने 5 लाख लिख दिए, और सब कुछ शुद्ध भक्ति के विषय में और इस तरीके से लिखे। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी जी का ये जितना भी उन्होंने लेखन किया, इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि गौड़िया वैष्णव परंपरा बनी रहे। और देखिए, रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लिखे, रूप और स्नातिक जो ग्रंथ थे, वो केवल वृंदावन में ही पड़े हैं, और रूप और सनातन के तिरुभाव होने के बाद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के तिरुभाव होने के बाद गौड़िया वैष्णव समाज में बहुत कंफ्यूजन फैल गया कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं क्या हैं। चैतन्य महाप्रभु के होते होते ही कंफ्यूजन फैलना शुरू हो गया था, तो आज की स्थिति हम जान सकते क्या होगी। तो जानवा माता जो उस समय सब वैष्णवों की देखभाल कर रही थी, उन्होंने जी गोस्वामी से निवेदन किया कि ये जो रूप और सनातन के ग्रंथ हैं इनको आप बंगाल और उड़ीसा में भेजो ताकि चैतन्य महाप्रभु के सही सिद्धांत स्थापित हो सके। तो जीव गोस्वामी जी ने दिखाया कि गौड़िया वैष्णव समुदाय में मिशनरी स्पिरिट क्या है। उन्होंने अपने जो तीन सबसे मुख्य शिष्य थे, कौन सबसे मुख्य शिष्य थे तीन, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीमासाचार्य और श्यामानंद पंडित, इन तीनों को बुलाया, बेस्ट डिसाइपल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी का काम दिया जा रहा है, बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम है। क्या बोला कि आप ये लेके जाइए ग्रंथ, गोस्वामी ग्रंथ लेके जाइए और उड़ीसा और बंगाल में इसका वितरण कीजिए। तो जीव गोस्वामी ने बताया कि इस मिशन में ऑर्गेनाइजेशन की कितनी आवश्यकता है। इससे पहले जो गोस्वामी थे वो चुपचाप वृंदावन में आए, ताल के पत्र पर ग्रंथ लिखा, बहुत ही सादा जीवन बिताया। जीव गोस्वामी बोला कि इतना करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रंथ किसके लिए लिखे गए हैं, एक एक बद जीव का उद्धार करने के लिए। तो एक एक बद जीव तक इन ग्रंथों की शिक्षाएं पहुंचना जरूरी है। हम कोई आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत का मतलब है कि हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इन ग्रंथों को बड़े प्रत्येक बद जीव तक पहुंचाना होगा। स्पिरिचुअल पोटेंसी में तो आपने इच्छा करनी है, सब कुछ प्रकट हो जाएगा, कल्प वृक्ष है, लेकिन भौतिक जगत में आपको ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि जो ये शिक्षाएं हैं पृथ्वी के कोने कोने में पहुंच सके। तो जीव गोस्वामी जी ने इन ग्रंथों को भेजना है उड़ीसा और बंगाल में, कहां से, वृंदावन से, और उस समय ट्रांसपोर्ट की बेस्ट व्यवस्था क्या होती थी, बैलगाड़ी। आप देखिए कोई सोच भी सकता है कि बैलगाड़ी से वेस्ट पंजाबी बाग से ईस्ट पंजाबी बाग भी नहीं जाएंगे हम, और वहां वृंदावन से बिहार और उड़ीसा, वो भी ग्रंथों को लेकर। तो क्या किया जी गोस्वामी जी ने, खुद जाकर उन्होंने जयपुर के राजा से पहले पासपोर्ट का अरेंजमेंट किया, फिर मथुरा में एक बहुत ही धनाढ़े बिजनेसमैन को पकड़ा, उनसे स्पॉन्सर कराया, जो सारी टेक्निक्स आजकल हम यूज करते हैं वो जीव गोस्वामी जी ने हमें सिखाई, उनसे एक बैलगाड़ी स्पॉन्सर कराई जिसमें चार बैल थे और उसमें 10 सिक्योरिटी गार्ड रखे गए, एक बहुत बड़ा ट्रंक लिया गया वुडन का, उसमें ग्रंथ डाले गए और उसको ताला लगाया गया, फिर उसके ऊपर लाख का, जैसे लाख से होता है ना, उसको कवर किया गया, सील किया गया, और इस ढंग से उनको भेजा गया। और भेजने से पहले तीन शिष्यों को बुलाया, तीन शिष्यों को एम्पावर किया, कैसे एम्पावर किया, जो नरोत्तम दास लोकनाथ जी के शिष्य थे उनको बोला कि आज से तुम्हारा नाम है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी के, श्रीनिवास जी को मतलब बुलाया, बोले आज से तुम्हारा नाम है श्रीनिवास आचार्य, और दुखी कृष्णदास को बुलाया, बोले आज से तुम्हारा नाम है श्यामानंद। तो तीनों शिष्यों को एम्पावर किया, बोला जाओ अब इन ग्रंथों का वितरण करो, ये तरीका है बुक पार्टी को भेजने का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी को। और जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जा रहे थे तो यहां से निकले वृंदावन से, तो सारे के सारे भक्त उनको छोड़ने गए, मथुरा तक जीव गोस्वामी स्वयं गए उनको छोड़ने के लिए, और मथुरा तक सब उनको देखते रहे, और फिर ये बैलगाड़ी में बैठ के ये तीन महान भक्त गए पुस्तक वितरण के लिए। फिर बीच में क्या होता है, हम सब जाते हैं, वीर हम वीर से मिलते हैं, ग्रंथ गायब हो जाते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य से रेगुलर करस्पॉन्डेंस उनकी हो रही थी। हमने अभी देखा पीछे कि जीव गोस्वामी कैसे एक आदर्श शिष्य हैं, हम देखते हैं जीव गोस्वामी कैसे एक आदर्श गुरु भी हैं। तो श्रीनिवास आचार्य उनके शिक्षा गुरु हैं जीव गोस्वामी पास। तो श्रीनिवास आचार्य जाते हैं, रास्ते में ग्रंथ चोरी हो जाते हैं, फिर ग्रंथ वापिस से मिल जाते हैं, तो श्रीनिवास आचार्य निरंतर अपडेट कर रहे हैं जीव गोस्वामी जी को। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य बंगाल में पहुंचकर वो विवाह करते हैं, फिर उनकी एक पुत्र होता है, तो सारा का सारा खबर श्रीनिवास आचार्य चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, और जीव गोस्वामी भी उस चिट्ठी का उत्तर देते हैं। जो श्रीनिवास आचार्य के पुत्र हैं, जीव गोस्वामी उनका नाम रखते हैं वृंदावन वल्लभ, और लिखकर भेजते हैं। तो देखते हैं कैसे शिष्यों के साथ जीव गोस्वामी जी का इतना मधुर संबंध है। तो इसी ढंग से एक बार भगवान श्री कृष्ण रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में आते हैं और उनको बताते हैं कि आप ये राधा दामोदर का विग्रह बनाकर जीव गोस्वामी जी को प्रस्तुत करो। तो स्वयं रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथ से राधा दामोदर का विग्रह बनाया, जो आज हम देखते हैं सेवा कुंज में वृंदावन में, और जीव गोस्वामी जी को प्रस्तुत किया। कुछ लोग बोलते हैं ये प्रतिभू विग्रह है, असली विग्रह अभी जयपुर में है, औरंगजेब के आक्रमण के कारण इसको वहां ले जाया गया। तो राधा दामोदर जी के विग्रह वृंदावन में उपस्थित थे, जो कि रूप गोस्वामी जी ने इनको दिए थे भेंट में जीव गोस्वामी को। और राधा दामोदर जी से जीव गोस्वामी जी का इतना प्रेम था कि स्वयं राधा दामोदर बंसरी बजाते थे और जीव गोस्वामी जी को बुलाते थे और उनसे भोग की भोग मांगते थे कि मुझे भोग लगाइए, और जीव गोस्वामी फिर उनको भोग लगाते थे। तो राधा दामोदर मंदिर जिसे बताया जाता है कि जब भी बंसरी की बात होती है तो मोबाइल फोन में तो राधा दामोदर जी का मंदिर जो बताया जाता है गौड़ीय वैष्णव के लिए आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है। जीव गोस्वामी जी से हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्होंने इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए इतना लेखन किया, और वो सबसे ज्यादा एक सिस्टमेटिक प्रीचर हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ऑर्गेनाइज किया। ये ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमेटिक प्रीचिंग आगे इस परंपरा को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। अक्सर जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो हम इन चीजों की अवहेलना कर देते हैं। बहुत ही जगत में हम बहुत अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं, बॉस के प्रेशर में सारा काम करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, होते भी नहीं है तो जबरदस्ती हमसे सिस्टमेटिक काम कराया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हम सोचते हैं रिलैक्स, क्या जरूरत है, 16 माला हो गई, 4 नियम का पालन हो गया, आराम से जीवन बीत रहा है। हम चाहते हैं इस आशा के साथ आते हैं कि अब यहां आने के बाद कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जीव गोस्वामी जी ने एक सिस्टमेटिक पिचिंग पर जोर दिया है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टमेटिक पिचिंग के ये शिक्षाएं आगे नहीं बढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे तो जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी की समाधियों से प्रार्थना करके राधा दामोदर मंदिर में ही शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की रचना कैसे होगी इसकी पूरा का पूरा मैप तैयार कर लिया था। आप सोचिए 1965 में अमेरिका जाने से पहले ही प्रभुपाद जी की पूरी प्लानिंग तैयार थी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर। जब तक प्लानिंग नहीं होगा तो आगे हम किस ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रभुपाद का विजन एकदम क्लियर था। इसी ढंग से हम लोग अगर चाहते हैं कि प्रभुपाद की शिक्षाओं को एज इट इज यथारूप आगे 10,000 वर्षों तक इस संस्था को चलाना है तो हम सबको जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हम सिस्टमेटिक प्रीचिंग में भाग लें। हमारी प्रीचिंग बहुत सिस्टमेटिक होनी चाहिए और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए। हम में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है कि हम सिस्टमेटिक प्रीचिंग कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, कोई बात नहीं। लेकिन जिन वैष्णवों के अंदर ये योग्यता है हम उनका सहयोग दें, उनका सहयोग देकर धीरे धीरे हम भी सीख सकते हैं, इसके एक अंग बने। ऐसे ही कुछ भी प्रचार करके किसी भी ढंग से करके हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को सही रूप से आगे हम बढ़ा नहीं सकते, प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो बहुत ही आवश्यक है कि प्रीचिंग सिस्टमेटिक हो, कल्टीवेशन सिस्टमेटिक हो, हमारा अपना पूरा जीवन जो है पर्सनल लाइफ भी पूरी ऑर्गेनाइज होगी, सिस्टमेटिक ढंग से हम अपने जीवन को चलाएंगे, तभी हम इस प्रभुपाद जी के साधन को और आगे बढ़ा पाएंगे। आज प्रभुपाद तिरुभाव दिवस पर गिरा स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब प्रभुपाद अपने अंतिम दिनों में थे तो गिरा स्वामी महाराज उनकी सेवा करके एक अलग कमरे में विश्राम कर रहे थे, तभी रात्रि के 1:30 बजे उनको उठाया गया कि प्रभुपाद आपको बुला रहे हैं। और प्रभुपाद के पास जब गिरा स्वामी महाराज गए तो प्रभुपाद ने गिरा स्वामी महाराज से पूछा कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट आंदोलन आगे कैसे फैलेगा। तो गिरा महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद प्योरिटी इज द फोर्स, चैंटिंग करेंगे, सब नियमों का पालन करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, प्रभुपाद ने बोला बाय इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मूवमेंट फैलेगा, इंटेलिजेंस और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो गिरिराज स्वामी महाराज फिर इसका मतलब बता रहे हैं इसका मतलब क्या होगा व्यवहारिक रूप में। तो गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग अपने इमीडिएट बेनिफिट के लिए नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि का उपयोग हमें अपने लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए कि तुरंत जो हमें सुख प्राप्त होता है उसके लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि कैसे इस मोमेंट को आगे बढ़ाना है। तो इससे हम सीख सकते हैं कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस प्रीचिंग को। जब तक हमारे अंदर स्वसुख की वासना रहेगी, अपने सुख की इच्छा है, तब हम कभी भी इस मोमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो अपनी बुद्धि का उपयोग हम अपने सुख की इच्छा ना करके बल्कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस बुद्धि का उपयोग करें। जैसे प्रभुपाद जी पहले से उनका पूरा मैप तैयार है कि कैसे वो इस कौन की स्थापना करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे। और देखिए प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में 108 मंदिर बना के गए। प्रभुपाद के शिष्यों ने इस कार्य को और आगे किया, 600 मंदिर अब लगभग विश्व में है। कोई भी आचार्य का जब तिरुभाव होता है उन आचार्य के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति से ही उस मिशन को पूरा कर लें। चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्ष बहुत होते हैं भगवान के लिए, पृथ्वी के कोने कोने अपना नाम खुद ही स्थापित कर सकते थे, लेकिन वो क्रेडिट प्रभुपाद को देना चाहते थे। प्रभुपाद चाहते तो 44 वर्ष तक संघर्ष ना करते रहते, शुरू से युवा काल से ही वो मंदिरों की स्थापना शुरू करते और अपने जीवन काल में हजारों मंदिर स्थापित कर सकते थे। प्रभुपाद ने संघर्ष करके दिखाया और 108 मंदिर स्थापित किए। उसके बाद उनके शिष्यगण ने और संघर्ष किया। अब जो आगे की जनरेशन है हम लोगों को उसमें और आगे संघर्ष करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की जो कृपा प्राप्त होगी वो तभी होगी जब हम उनके जीवन चरित्र को अच्छे ढंग से समझेंगे और उनके जीवन चरित्र को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। ये जो हम आचार्यों की कथा करते हैं केवल एक कथा के रूप में नहीं है, केवल इसलिए है कि हम जाने कि हम अपने जीवन को कैसे जिए और अपने जीवन में इनकी शिक्षाओं को हम कैसे उतारे। तो आज श्री रजीव गोस्वामी पाद जी से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उनकी तरह इतने विद्वान, जिस तरह से जीव गोस्वामी पाद जी ने 500,000 श्लोक लिखे और इतने अच्छे ढंग से संस्कृत के श्लोकों का वो व्याकरण जानते थे, लेकिन कम से कम हम इस मोमेंट में अपना कुछ योगदान कर सकें, इस मिशन के इस मिशनरी स्पिरिट को हम अपने जीवन में उतार सकें और इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए हम एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक प्रीचिंग में भाग ले सकें। तो इसके लिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करके इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचें। आज देखिए आज जो ग्रंथों का वितरण किया जा रहा है, ये ग्रंथों का वितरण इसलिए किया जा रहा है कि प्रभुपाद की जो शिक्षा भगवद्गीता यथारूप एज इट इज लोगों के पास पहुंचे, अन्यथा लोगों के पास भगवद्गीता के अलग अलग रूप है, यथारूप नहीं है। तो यथारूप पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारे पास है, क्योंकि यथारूप भगवद्गीता हमारे पास है तो इसको वहां पहुंचाना है। लेकिन केवल किताबों के वितरण से ही धर्म की स्थापना नहीं होगी। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तद्वाग विसर्गो के जो प्रसिद्ध श्लोक है उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम लोगों को एक सिस्टमेटिक वातावरण बनाना पड़ेगा जिसमें कि भगवदगीता और भागवतम का सिस्टमेटिक प्रीचिंग हो सके। तो जिन लोगों को हमने भगवदगीता दी है, ग्रंथ का वितरण किया है, बस एक बार साल में नेताओं की तरह जाके अगले साल फिर हम पहुंच जाएं। हमें सिस्टमेटिक उनको कल्टीवेट करना पड़ेगा ताकि जिस ढंग से उनके अंदर एक रुचि उत्पन्न हो कि वो उस ग्रंथ को पढ़ें, एक ऐसा वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो ये आज हम प्रार्थना कर सकते हैं श्री रजीव गोस्वामी पाद से और श्री प्रभुपाद जी से। श्री रजीव गोस्वामी पाद की, षड गोस्वामी वृंद की, श्री जी गोस्वामी तिरुभक्ति महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेम।